वो इलियास भाई इससे आगे नहीं निकलना, देखें। हाँ इमाम जी, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین پاکیزہ طریقے بتائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت کے ذریعے، آپ کے اخلاق کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی میں کیسے رہتے تھے اور گھر کے باہر کیسا رہتے تھے، یہ اور آپ کی مجلس ہوتی تو کیسے ہوتی تھی، ان اخلاق کی روشنی میں اپنے عادات و اطوار کو اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوتی تھی. مجلس جو ہوتی ہے، گیدرنگ، بیٹھنا آپس میں دو تین چار پانچ، کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ مجلسیں اس طریقے سے ہٹ کر اگر ہوں گی تو فتنے کا دریا بنیں گی. کیونکہ جب آدمی جمع ہوتا ہے تو خیر وجود میں آئے، جمع ہونا خیر وجود میں آئے، جمع ہونا کوئی شر کا ذریعہ نہ بنے، تو اس کے لیے اخلاق نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی مجلس کیسی تھی. سوال کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے، تو انہوں نے جو تفصیل بیان کی، حضرات صحابہ کیسے عاشق تھے، دیکھیں ایک ایک ادا، ایک ایک چیز کتنا نوٹ کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خوبیاں بیان کرنے لگے اپنے بیٹے کے سامنے. یہ جو شمائل ہیں، شمائل کی حدیث ہے، یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، باہر لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم جب بیٹھیں تو ہم کیسے. کیونکہ مجلس صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، گھر میں فیملی بیٹھی ہے تو کیسے بیٹھے، دوستوں کے ساتھ دعوت پہ بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے، ایک ضرورت ہے ہماری. تو یہ اخلاق جب ہمارے ان مجلسوں میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، خیر کا ذریعہ بنیں گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا، لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر اللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سب سے پہلی خوبی जब भी आप बैठते मजलिस में, मजलिस से खड़े होते, अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह को याद करते। जिस मजलिस में अल्लाह को याद न रखा जाए वो मजलिस जो है उसका रुख ही कुछ और होता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ने यह समझाया, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, जब आप तीन बैठ के कोई बात करो तो चौथा अल्लाह है, ये ख्याल करो, ये यकीन करो। जब चार बैठ के मजलिस कायम करो तो पांचवा अल्लाह है, ये ख्याल करो, ये यकीन करो। वहुवा माअकुम अयनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम करो। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, तन्हाई में बैठकर जो तुम आपस में बात कर रहे हो अल्लाह लिख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाते वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, अल्लाह लिख रहे हैं, ये सब चीजें जाया नहीं होंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं, क्या है, एक हदीस में है, कयामत के दिन सबसे अफसोस वाली, हसरत वाली वो मजलिस होगी जिसमें अल्लाह का नाम न लिया जाए। किसी भी उनवान पर हम जमा हो, किसी भी उनवान पर, घर में हो, बाहर हो, दोस्तों में हो, कहीं भी हो, हमारी गैदरिंग हो, एक थोड़ा सा अल्लाह का नाम होना चाहिए। अल्लाह का नाम, ये बरकत हो कि भैया अल्लाह को याद रखना है इस मजलिस में, कि भाई अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह देख रहे हैं। मजलिस खत्म होती है तो दुआ पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। ये दुआ जो है सिर्फ दीन की मजलिस के साथ नहीं है, जब दीन की मजलिस के साथ ये दुआ है तो दुनिया की मजलिसें तो बदरज औला है, तो एक खूबी है। और दूसरी खूबी यह है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न तहा अला क़ौमिन मिन जलसिन फन्तहा बिही अलल मजलिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में आते, बैठे हुए हैं लोग, जैसे ही आप मजलिस में आते जगह जहां मिलती वहां बैठ जाते। आप अपने लिए जो है ना बाला नशीनी को पसंद नहीं करते थे, बाला नशीनी समझे, कि भी अपने लिए मजलिस में एक खास जगह बनाई जाए, मैं वहां आकर बैठूं और सब मेरे, आप इसको पसंद नहीं फरमाते थे। हालांकि सहाबे कराम आपको इसकी, इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर तशरीफ लाए, जगह थी, बैठ गए, तो सारे सहाबा उतर मुतवज्जे हो गए, गोया आप, क्योंकि आप ही तो मजलिस के रूह रवा होते थे, मजलिस की जान होती थी, तो सब उधर मुतवज्जे हो जाते। लेकिन आप सहाबा को तालीम और तरबियत देने के लिए, क्योंकि जब आदमी के मिजाज में ये हो कि जिस गैदरिंग में मैं पहुंचूं वहां मुझे तखस्सुस हो, वहां में मुझे इंपॉर्टेंट समझा जाए, मुझे जो है एक प्रायोरिटी दी जाए, ये मिजाज जो है ना बड़ा खतरनाक है। इस हदीस की शरह में उलमा लिखते हैं कि बाला नशीनी की जो हिर्स है कि भैया मुझे, ये चीज तकब्बुर पैदा करती है, और ये तकब्बुर जो है ना ये बड़ी खतरनाक चीज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इम्तियाजियत नहीं चाहते थे, इम्तियाजी कि भैया मुझे एक ऊंचा दर्जा दिया जाए, हालांकि आप सबसे अफजल हैं, सबसे आला है। इज़न तहा अला क़ौमिन जलसा, कितनी खूबसूरत, देखे ना वक्त का, कभी हम पहुंचे किसी आखिरी में, जहां है वहीं बैठ गए, और वो बैठने को आर नहीं समझते थे, उसके बैठने को अपनी शान के खिलाफ नहीं समझते थे। ये सहाबा को आप सिखा रहे हैं कि आप बैठे जहां बैठे वहीं, जहां जगह है वहीं बैठ गए, और आप कभी उसको जो है ना आर नहीं समझे। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन ऐ मिनल मुतसन्निईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुफ से, तसन्नु से, बनावट से पाक साफ थे। दो बातें हुई, सोचे एक तीसरी चीज, सुभान अल्लाह, मजलिसुहु मजलिसु इल्मिन व हयाइन व हिल्मिन व सबरिन व अमानतिन ला तुरफ़ु फ़ीहिल अस्वात, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं कि मजलिस जो होती है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे से फरमा रहे, बेटा हम आपकी मजलिस में ये चीजें सीखते थे। मजलिस से चीजें सीखी जाती हैं, बच्चे बड़ों की मजलिस से सीखते हैं कि बच्चे हमारे बड़े क्या बात कर रहे हैं, हमारे बड़े क्या बात कर रहे हैं। बच्चे जो है बड़ों की मजलिस में बैठे हैं, बच्चियां अपने माओं की मजलिस से सीखते हैं कि भाई माएं क्या टॉपिक पे बात कर रही। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटे से कह रहे हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से ये छह बातें सीखते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने, बहुत मशहूर इमाम है, अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में लिखते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जो मजलिस होती थी, उनका जो दर्स हदीस होता था, कई लोग दूर दूर से सफर करके हदीस से ज्यादा उनकी मजलिस में इल्म और इल्म से ज्यादा अदब और अखलाक सीखने के लिए आते थे। भैया हदीस तो हमें पता है, लेकिन हम इमाम अहमद इब्न हंबल की मजलिस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वहां पर अदब सीखना है, वहां पर अखलाक सीखना है उनकी मजलिस में बैठकर। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे हदीस का इल्म दिया, लेकिन मैं इसीलिए ना, एक सहाबी ने पूछा, अय्यु जुलसाउना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हमनशीन कौन हो, मैं किसकी, मैं किन लोगों के साथ बैठूं, कैसे लोगों के साथ मैं बैठूं? आपने फरमाया, जिनको देखकर अल्लाह याद आए, मतलब आखिरत याद आए, अल्लाह की बात हो, ऐसी जगह बैठो, इससे तुम्हारा ईमान ताजा होता है, तुम्हारी आखिरत की फिक्र पैदा होती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से फरमा रहे हैं, बेटा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये चीजें सीखते थे, क्या? मजलिस उल व हिल व हया वल अमाना व सब्र ला तुरफ फीहि अल अस्वात वला तुबन। वाकई दोस्तों, एक एक चीज जो है ना इतनी कीमती है कि अगर वो हमारी जिंदगियों में आए, सुभान अल्लाह, आपकी मजलिस में हम इल्म सीखते थे, जाहिर सी बात है अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, इल्म सीखते थे कि आपके जरिए से, आपकी जबान से इल्म, और आपकी मजलिस में हिल्म सीखते थे, हिल्म बर्दाश्त, कोई आप बैठे हुए हैं, कोई देहाती किस्म के लोग आते आपसे बिल्कुल इन्हें बेझिझक सवाल कर देते, आप कोई बुरा नहीं मानते, आप अच्छी तरह जवाब देते। एक साहबी, एक शख्स आए, उन्होंने कहा, जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो माल में से मुझे दो। अब इस तरह सवाल अगर कोई करे तो क्या है, यानी आदमी जरूरत का सवाल कर रहा है, भाई मुझे जरा जरूरत है, पैसे दो। अगर ये कहें जो अल्लाह ने माल तुम्हें दिया है उसमें से मुझे दो, आप मुस्कुराए, आपने बुरा नहीं माना। यह है मजलिस हिल्म, हम देखते थे कि कैसा हिल्म, कैसी बर्दाश्त होती थी, कोई भी नागवारी नागवार बात हो जाती आप उसे झेल लेते, बर्दाश्त कर लेते। इल्म और हिल्म ये दो जुड़वा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में भी ये चीज बताई गई, अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म व अकरिमनी बिल तक्वा व जम्मिलनी बिल आफिया। ऐ अल्लाह, मुझे इल्म देकर मेरी मदद फरमा और मुझे खूबसूरत बना दे हिल्म देकर, बर्दाश्त देकर। क्योंकि जब मजलिस में बैठे दस आदमी बैठे हों, पंद्रह आदमी बैठे हों, हर एक का अलग मिजाज है, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी तरह से भी बोल सकता है, तो वो मजलिस में खैर कैसे वजूद में आए? बर्दाश्त करना, दरगुजर करना, ऐसा नहीं है कि तू तू मैं हो जाए, सवाल और जवाब हो जाए। मजलिस इल्म, मजलिस हिल्म, और तीसरी चीज मजलिस हयाइन, उस मजलिस में हया, कोई बेहयाई की बात नहीं होती थी, हया की बात, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं होती थी जिसमें बेहयाई हो, न इशारे से न जबान से। सहाबा फरमाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमने ये सीखा, कभी किसी की कोई गलती हो जाती उस मजलिस से बाहर वो चीज नहीं जाती थी, कभी उस, ये ना एक चीज, अगर कई हजारों फितने खत्म हो जाएंगे, पांच आदमी दस आदमी बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन जब किसी से गलती होती उस मजलिस से वो चीज बाहर नहीं जाती थी, उसी को कहते हैं मजलिस अमाना, वो अमानत वाली मजलिस होती थी, अमानत वाली मजलिस। कभी किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा, अल मजालिस बिल अमाना, मजलिस जो है अमानत होती है, चार आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पांचवें को खबर हो, हाँ इल्ला एक एक कोई ऐसी बात हो जो कही जा सकती है, या फिर कोई नुकसान की है तो फिर आदमी बता दे। आज का दौर कैसा है, चार आदमी बैठकर बात करें, बात उठकर ख़त्म हो, तो इंडिया से व्हाट्सएप आता है, सुना कि आपके मजलिस में ये बात हो रही थी, अभी बाहर निकले भी नहीं है, मतलब नेटवर्क इतना मजबूत है माशाल्लाह, है नहीं? ये फित यानी जितनी जितना मजबूत नेटवर्क है, फितने भी उतनी मजबूत हैं, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप, अभी गुज़श्ता हफ्ता एक मशवरा था तो एक साहब ने कहा कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी लोग हमारी कम्युनिटी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि नहीं, असल में इस्तेमाल का तरीके की बात है बस। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इल्म वाली, हिल्म वाली, अमानत वाली, अमानत की बात हो। बाज़ मरतबा फ़ोन में बातचीत होती है, मस्तूरात एक दूसरे से बात करते हैं, बस ठीक है, वहीं तक बात हो, वहीं तक बात हो, मजलिस की अमानत, मजलिस में बात होती वहीं तक बात हो। मजलिस हयाइन, कभी कोई शर्मिंदगी, किसी का वजू टूट जाए, शर्मिंदा हो जाता, ये साहब सीरत में लिखा है, कभी मजलिस में किसी का वजू टूट जाता, वो आदमी जिससे जिसका वजू टूटता वो शर्मिंदा हो जाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर अपनी निगाहें नीची फरमा लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें नीची फरमा लेते थे। शर्मिंदगी की बातें अगर कुछ होती तो उस बस, ऐसा नहीं कि इशा नहीं, लातुर फरूफी हिल अस्वात, आपकी मजलिस में आवाज ऊंची नहीं होती थी, शोर नहीं होता था, अभी के बातचीत कर रहे हैं तो चीखना चिल्लाना। अभी आगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, मैं एक एक बात तफसील नहीं अर्ज कर रहा हूं, खाली आप शमाइल में इस हदीस को उठा कर देखें, सुबहान अल्लाह, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से जो बातें फरमा रहे हैं, इस हदीस की रोशनी में अपने 24 घंटे की घरेलू और आप हमारी इनफिरादी जिंदगी को हम बना सकते हैं, और इससे अपनी जात, यानी अपनी जात कैसे बनेगी कि भाई कि मेरी जात से किसी को नुकसान नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। अखलाक, अखलाक क्या है? अखलाक का मकसद यह है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि मुझसे दूसरों को नफा पहुंचे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल था, ला तुरफाउ फीहिल अस्वात। सहाबा इकराम तो यानी बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं, गुफ्तगु आहिस्ता हो रही, युवक्किरून फीहिल कबीर, मजलिस में बड़े होते हैं, उम्र के एतबार से बड़े, बुजुर्ग, इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, युवक्किरून फीहिल कबीर, मजलिस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बड़ों का बड़ा एहतराम होता था, ये बड़े हैं, इनकी कुर्बानियां हैं, ये हमारी कम्युनिटी के पुराने हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। युवक्किरून, युवक्किरून कहते ताजीम करना, हर एतबार से उनका लिहाज करना। युवक्किरून फीहिल कबीर वयरहमून फीही अलसगीर, आपकी मजलिस में कोई बच्चा होता, उस बच्चे पर आप जो है ना, उस बच्चे को, उस बच्चे पर शफकत होती थी, गोया उस मजलिस में बैठे हैं तो ऐसा लगता था कि आप हमारे लिए एक बाप की तरह, आप हमारे लिए एक अब्बा की, बाप की तरह, ऐसे शफीक, बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, ईमान वालों के लिए बड़े नरम, मुतादिलीना मुतवाज़ईना, मजलिस में बैठे हैं तो सब बराबर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आकर कोई बैठते हैं, सुभान अल्लाह, युअती कुल्ला जुलसाइही बिनसीबिही, हर बैठने वाले को उसका हिस्सा मिलता। आप बैठे हैं किसी दावत में चले जाएं, कहीं गैदरिंग में पांच लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक से ही बात कर रहे हैं। युता कुल्ल जुलसाइही बिनसीबिही, हर बैठने वाला अपना हिस्सा पाता था तवज्जो का, मोहब्बत का। बैठे हैं तो आपसे भी थोड़ी बात हो गई, आपसे भी थोड़ी बात हो गई, आपसे भी थोड़ी बात हो गई, आपसे हर, ये है मजलिस का माहौल। इसी को कहते हैं यतआदलून, कि बराबरी होती थी तवज्जो में, मोहब्बत में, यहां तक कि हर आदमी ये समझता था मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा हूं, सबसे करीब हूं। आप ऐसा, सुभान अल्लाह, यानी कैसी आप उम्मत को कैसी चीज सिखाए हैं कि मजलिस में बैठे हैं, कभी किसी को किसी के दरमियान ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि उसे महसूस हो कि हमारे दिल में तुम्हारी तवज्जो कम है। متوازعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توازو کے ساتھ، توازو کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اذا انتہا على قوم جلسا، جگہ جہاں ملی وہیں بیٹھ گئے، یہ لیکن توازو ہے، حد درجے توازو. توازو جو ہے نا ایمان کی صفت ہے، اور ایمان جت قدر ہوگا اسی قدر توازو ہوگی، اور یہ اخلاق کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے توازو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بغیر توازو کے زندگی میں نہیں آ سکتے. آپ کا ایک ایک رویہ، آپ کا ایک ایک خلق آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے توازو ہے، اس کے پیچھے توازو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس کوئی مجلس میں آ کر بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ اٹھ جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات سن رہے ہیں، وہ اپنی بات سن لیے، پھر آپ جب وہ جانے لگے تو پھر آپ جا رہے. دوستو کیسے مبارک اخلاق دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعادلین، متوازعین، کہ سب برابر ہیں آپ کی مجلس میں، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں فرما رہے، کسی کے درمیان ہاں توازو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے ہیں تو بڑوں کا اکرام ہے، بڑوں کا احترام ہے، بڑوں کا ادب ہے. چھوٹے ہیں تو چھوٹوں پر شفقت ہو رہی ہے، انہیں پیار ہو رہا ہے، انہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس طرح ہوتی تھی، مجلس اس طرح، آپ کی مجلس کوئی باہر سے آ کر دیکھتا تو یہ چیزیں دیکھتا اس میں. ایک ایک اخلاق اگر ہماری زندگیوں میں، ہماری طبیعت میں اگر آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اخلاق کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو بنا دے. یہ اخلاق کیا ہیں؟ یہ سرمایہ ہے ہمارا، یہ سرمایہ محفوظ اسی لیے کیا گیا، اس کو ہم لینا ہے ایک ایک چیز کو. کہ ہم بیٹھے گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ تو کس طرح بیٹھے، بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں ہونا چاہیے، کیا ہم بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو میں امانت ہو، ہماری گفتگو میں حیا ہو، ہماری گفتگو میں بڑوں کا ادب ہو، ہماری گفتگو میں ایسا کوئی جملہ نہ نکلے. ہاں بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نکل جاتی ہے چیز، بچے سیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح بڑوں کی بے ادبی ہوتی ہے. یہ مجلسیں کہیں کی بھی ہوں، گھر کی ہوں، باہر کی ہوں، اس کا ہمیں خیال رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں انشاءاللہ، اذان ہوگی، اذان ہوگی، سنت پڑھ لیں. Thank you.